तो अभी तक जितनी बात है उसका खुलासा क्या है कि कर्ज का मानी क्या है, टू कट, यानी आपने कर्ज किसी को दिया तो आपकी चीजें कम हो गई, खत्म हो गई। फिर कर्ज क्या होता है कि किसी को इस सूरत इस शर्त पे कुछ चीज दी जाए कि ये वापस लेगी और एक खास मुद्दत तक होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि नबी सल्लम ने भी कर्ज लिया, सहाबा कराम ने भी लिया, हजरत आयशा भी लेती थी, हजरत उमर ने भी एक मौके पे कर्ज मांगा, ठीक है। फिर चीज अब हमने देखी कि कर्ज लेने में कबाखते क्या है। अब लिटरली अगला सवाल हमारे सामने है जिससे अब अगला सेशन हम शुरू कर रहे हैं, और वो क्या है कि कर्ज लें कि ना लें, कर्ज लिया जाए या ना लिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम मुहद्दिसीन के चंद अकवाल को सामने रखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्ज से पनाह तलब करने की जो अहादीस हैं उसकी शरह में हाफिज़ इब्ने हजर, बहुत बड़े अल्लाह के हुक्म से आलम दीन थे, बहुत बड़े आलम दीन थे, हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी का नाम था, ये कहते हैं कहा गया है इससे मुराद है नाजायज कामों के लिए लिया हुआ कर्ज, यानी जिस कर्ज से पनाह मांगी गई उसकी पहली चीज नाजायज काम के लिए कर्ज नहीं लेना, ठीक है। नाजायज क्या होता है, जो जायज ना हो, सीधी सी बात है, हैं? और जायज कामों की खातिर लिया हुआ ऐसा कर्ज कि इसकी वापसी इसकी बसात से बाहर हो। मेरा तो दिल कर रहा था इसको रेड कलर का हाईलाइट कर दो, यानी अभी देखें आपको इतनी बड़ी बात इस एक तारीफ से पता चल गई है कि शायद आप आगे कुछ भी ना सुने तो आप समझ जाएंगे। वो कर्ज नापसंदीदा है जो नाजायज काम के लिए हो, और दूसरा वो कर्ज नापसंदीदा जिसकी वापसी आपकी बस में ही नहीं हो, आपकी हिम्मत से बाहर हो। क्या बाज दफा लोग ऐसे ऐसे कर्जे अपने दोस्तों साथियों रिश्तेदारों से या बैंकों से नहीं ले लेते कि फिर वापसी में सिर्फ बैंकरप्सी ही होती, आपने नाम सुना है ना। अब आपको इस चीज में दो चीजें मिली हैं, मैं सारी करके फिर इकट्ठी और इंशाल्लाह एंड पे क्वेश्चन आंसर में आप जो भी सॉल्व करेंगे उसमें कवर करेंगे। पहली बात, नाजायज काम के लिए कर्ज। नाजायज क्या होता है, नाजायज है बेटी की शादी है, आपने फुलझड़ियां लगानी है, आपने फायर वर्क करना है, आपको कर्ज चाहिए, लीजिए। और यकीन करें कि मैंने खुद देखा अपने मुल्कों में एक बोर्ड के जिसमें शायद किसी बैंक का ही था कि अब आप अपनी बेटी की खुशियां पूरी करें, आप क्यों से इसके, और साथ एक दुल्हन बनाई हुई और सर पे मर्द प्यार दे रहा है जो एक हमारा टिपिकल अंदाज होता है ना बूढ़ों के प्यार, और नीचे लिखा था अब मैं बेटी के हाथ बड़े अरमानों से पूरे कर पीले करूंगा। तो नीचे ये क्या ही मतलब है, क्या है हमसे कर्जे लें और रुसवाऊं फिर बाद में, तो नाजायज चीजों पर खर्च नहीं करना, ठीक है। फिर इसी तरह हाफिज इब्ने हजर ही एक और बहुत प्यारी शरह लिखते हैं, कहते हैं फिर मैंने हाशिए इब्ने मुनीर में देखा कर्ज से पनाह मांगने और कर्ज लेने के जवाब में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी बात है, और देखें खुद से हदीसें पढ़ने में ये न होता है कि एक हदीस पढ़ के आप कहते हैं फिर दूसरी उसे ऑपोजिट है, हालांकि आपको पता भी नहीं लगा आपने बहुत सारी ऑपोजिट पढ़ ली है, लेकिन चूंकि हम एक इल्म की महफिल में बैठे हैं तो आपका जहन मुतमईन है। तो ये कहते हैं तारुज, कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को, कि लेने या ना लेने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, तारुज नहीं, क्योंकि जिस चीज से तलब जिस चीज से पनाह तलब की गई है वो कर्ज की मुसीबतें हैं, और जो शख्स कर्ज ले और इनसे महफूज रहे तो इसको अल्लाह ताला ने पनाह अता फरमा दी और इसने जायज काम किया। बहुत प्यारी बात है, पहली बात है नाजायज काम के लिए नहीं लेना, दूसरी बात क्या है कि लेना है तो इतना लें कि जो वापस कर सके, ठीक है, जायज काम ले लीजिए लेकिन वापस करने की इस्तेआत हो। तीसरी बात क्या कहते हैं कि कर्ज लेने से पनाह नहीं मांगी, कर्ज ले ले लेकिन कर्ज की जो मुसीबतें हैं उससे पनाह मांगी है। और चौथी बात कि जो कर्ज लेता है और फिर इसको आराम से वापस कर देता है तो कोई हर्ज नहीं है इसको, बल्कि अल्लाह ने मदद की। वो हजरत आयशा की हदीस याद करें ना, बात का खुलासा क्या निकला, नाजायज काम के लिए कर्ज नहीं लेना। बल्कि मैं तो सोच रही थी इस सीरीज को पढ़ाते हुए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस नो, हैंकी पैंकी हम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि लोग बहुत कुछ पढ़ा के तो फिर भी लेकिन आज के दौर में तो मजबूरी है, तो कुरान और हदीस सामने रखा होता है तो फिर उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई तीसरी राय देने की जरूरत है, यानी बाद में आप मुझे मेरे पास अच्छा है सारा कुछ तो पढ़ा आपकी क्या राय है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे आपके इस जुमले से बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी कि मेरी क्या राय, मेरी राय की क्या हैसियत हो, ठीक है। तो कर्ज ले सकते हैं जायज काम पे, नाजायज पे नहीं लेना, जायज में वो ले सकते हैं जिसको अदा करने की ताकत हो। तीसरी चीज क्या है कि कर्ज की जो मुसीबतें हैं उससे पनाह मांगी, लेकिन अगर कोई मजबूरी में कोई ऐसा कर्ज लेता है कि जिसको उसको पता है कि मैंने अदा करना है, इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत सारी स्टोरीज शेयर करूंगी इसमें कि फिर अल्लाह ने लोगों की मदद कैसे की, ये तो फिर आप लोगों की लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पढ़ के तो देखें फिर अल्लाह उनके लिए इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल था, ठीक है। اور اگر کوئی اسرا کرے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے بہت ساری. اسی طرح علامہ عینی ہے, ان کی بھی شرح پڑھیے, بہت ہی خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے جس قرض سے پناہ طلب کی, یا تو وہ جائز مقصد کی خاطر ہوگا, لیکن اس کے پاس اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوگی. رائٹ, پہلی صورت جو ہم نے دیکھی. اسی طرح وہ اپنے بھائی کا مال برباد کرنے کے در پہ ہوتا ہے, یا وہ قرض, یعنی پہلی صورت کیا کہ جس قرض سے پناہ مانگی وہ قرض لیا تو جائز کام کے لیے تھا لیکن واپسی کی شکل نہیں ہے. اب آپ کو کسی نے ٹرسٹ پہ $1,000 دیا نا, کیا واپس کر دیں گی؟ اب آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی, تو اب آپ کے اس بھائی کا مال برباد ہو گیا نا. آپ ایکسپیرینسز یاد آ رہے ہوں گے, ایسی بیسیوں چیزیں تم الحمدللہ میرے بھی پاس ہیں کہ میرا حال جن عبادات میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ دوسرے کو قرض دینے میں آتا ہے. کیوں کہ آگے آپ پڑھیں گے, بتتے ہیں اس کی اتنا فائدہ ہے دوسرے کو قرض دینے کا, دل کرتا ہے صرف اپنے کپڑے اور کھانے پینے کا, شام کا ایک دو ہفتے کا سامان رکھ کے سب قرض میں دے دو. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کوئی تمہارے سامنے سوال ہی آئے تو دو چوائسیز ہو نا, کہ یا تو مدد کر کے جانے دو یا اس کو قرض دو, تو قرض دو. اتنے اس کے فائدے, یہ تیسرے ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنا بڑا عمل ہے دوسرے کو قرض دینا کہ آپ جس کو قرض دیتے ہیں آپ کو ہر دن اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ہے, جب تک وہ لمٹ رہتی ہے. ایک مہینے کی لمٹ آپ نے کسی کو دی کہ ایک مہینے میں $1,000 واپس کر دیں گے آپ کو, اب آپ $1,000 واپس کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھ دو, ایک مہینے تک ایوری ڈے 1,000 آپ کو صدقہ, کتنا ہو گیا ایک مہینے کا؟ آپ اس مہینے کیا دعا کریں گے؟ چاند 29 کا ہو کہ 30 کا, 31 کا ہو, ہم کہیں جی آج چاند کو بھی سورج کی طرح 31 کا کر دے. رائٹ, ہر دن آپ نے $30,000 صدقہ کیا اس مہینے, تو میرے پاس 1,000 ہو تو میں تو خوشی سے دوں, میرا تو فائدہ. دیکھیے بزنس مائنڈیڈ لوگ گھروں میں پیسے تھوڑی رکھتے ہیں, وہ تو انویسٹ کرتے ہیں, تو قرض دوسرے کو جسٹ سراسر انویسٹمنٹ ہے. ہمارا اگلا پورا ٹاپک اس پہ آ رہا ہے انشاءاللہ, نیکسٹ ٹاپک جو آئے گا. ٹھیک ہے, اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا, صدقہ دے دیا تو 1,000 صدقہ دیا, بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کس میں اجر زیادہ؟ قرض میں. اور مہینہ گزر گیا اور وہ بےچارا $1,000 دے نہیں پا رہا, لیکن نیت اس کی ہے دینے کی, میں دوں گا چلو 15 دن اوپر کر دیں, تو آپ کو کتنا روز اجر ہے؟ 2,000 کا ڈبل روز ملے گا, 2,000. میں کہتی ہوں اگر ہم یہ حدیثیں عام کر دیں نا تو لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے لوگوں کو دیں. شرط یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اتنے باشعور ہیں کہ جب بینک والے جو آپ کو واپس کر رہے ہیں وہ جو مرضی کر رہے ہیں اس کے ساتھ, وہ ایک الگ ایشو, اس کو بھی ہم نہیں چھیڑتے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ میں نے اپنا قرض, میں نے پیسہ کسی کو دیا اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو مجھے دے دے گا, اس کا تو پھر اجر ہی کتنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ناروے میں ہمارے اسکول میں یہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں یہ کس بیس پہ بنتے ہیں؟ لوگ ہمیں آ کے پکڑاتے ہیں. ابھی ہم نے کل پرسوں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک اسکول کے لیے جگہ دی, گھر ہے پورا, وجہ کہ اب کیا ہم نے اب دیکھے نا اتنی جلدی اتنا پیسہ کیسے ریز ہو سکتا ہے, الحمدللہ دیتا بھی. اور وہ قرضے اتنا کیا سوچ کے دیتے ہیں کہ دل چاہا تو لیں گے نہیں تو نہیں, ہر ایک کی ڈفرینٹ ڈیل ہوتی ہے. آپ یہاں صرف جتنے لوگ یہاں آج بیٹھے ہیں نا, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ اور میں اپنی جمع جتھا لیں نا تو یہ جو ہر وقت جگہ مسئلہ ہے ہم یہاں ایک چھوٹی سی بلڈنگ لے سکتے ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ اٹس ٹرو. لیکن ہمیں ٹرسٹ ادھر زیادہ ہوتا ہے ادھر نہیں, لیکن شرط یہ کہ پھر یہ اسکول والے آپ کو یقین دلائیں کہ جس دن آپ کو ضرورت پڑے گی پیسہ آپ کا محفوظ ہے. اور الحمدللہ ایک دن بھی کبھی کسی کو پیچھے نہیں ہونا پڑا, یہ ہماری ریپوٹیشن ہے. پہلا اسکول جب لیا تو ہمیں لوگوں نے جو ہوا لیا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, لیکن چونکہ ان کے سن ٹائم واپس ہوئے جو ان سے لمٹ تھی, ہر چیز پیپر ورک پہ ہوتی ہے الحمدللہ. اس دفعہ ہمیں ڈے ون سے کیا, یہ اسکول جو نئی جگہ لی اس کی وجہ یہ بنی کہ لوگ آ کے پوچھ رہے تھے اب اور کچھ نہیں لینا, بلکہ تو پنجابی میں کہتے تھے ان اور کچھ نہیں لینا. جو ہمارے ساتھی سے لگتا ہے ان کا 1,00,000 کونجا جمع ہو چکا ہے ان کے گھروں میں, وہ تو شکر کر کے دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹی. اور جب جائیں گے پاکستان, ہم نے ایک ایک پت لکھی ہوتی کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر بھکاری کیوں بنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے بہت ساری چیزیں ہم آگے دیکھیں گے, لیکن یاد رکھیے کہ مسلم کے مال کو خرچ کرنا اور نہ کرنا یہ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے بعض اوقات. وجہ کہ آج ہمارے خود مسلمان دوسروں کے ہاتھوں میں یرغمال ہوئے ہیں, دے آر جسٹ لائک آپ کہہ لیجئے کہ ہوسٹ بنے بیٹھے ہیں. کیسے کس طرح ہمارا مال ہے کھا دوسرے رہے, چیزیں ہماری انجوائے وہ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے اس کورس کے بعد اب اگلا کورس ڈائریکٹ انٹرسٹ پہ بھی کرنا پڑے گا, انٹرسٹ اے ٹو زی. ابھی قرض میں ہی بہت کچھ کھل جائے گا, حالانکہ میں نے پوری کوشش کی اور نیت کی ہے کہ میں اس قرض کے ٹاپک میں بلا وجہ کہیں انٹرسٹ کو نہیں لاؤں گی. انشاءاللہ ہمارا اس سیریز کا آخری ٹاپک آئے گا, مجھے شور ہے, لیکن ابھی صرف قرض پہ ہی فوکس کر کے دیکھیں کہ ہم مسلم اگر ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کریں, سوسائٹیز کو ٹیچ کریں, गरीबों को या जिन्होंने पैसे लिए उनको पता हो देना है। आज हमारे खानदान के आधे मर्दों के बाल सफेद हो गए, गुराई फंसी हुई है। गुराई समझते हैं क्या होती है? कैपिटल इनकम। जैसे आपने 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया, बेचारे करके दुकानें बनाते हैं, करके मेहनत की बिजनेस किया, साल बाद पूछे भाई सुनाएं क्या हालत है, क्या करे, पैसा सारा लोगों के घरों में, लोग दे ही नहीं रहे, आगे कहाँ जाए, उधार पे काम। यदि जिनका बिजनेस से ताल्लुक है वो मेरी ये बातें समझ रहे होंगे। यदि आज हमारे मुल्कों में भी, इधर तो और इशू है, अपने मुल्कों में भी देखिए, जहालत की वजह से शरीफ मर्द का कारोबार नहीं चल रहा। रेड़ी वाला घर में रात को ज्यादा पैसे ले जाता है क्योंकि उसकी मेहनत है, और 10 लाख लगा के जो कमाई दुकान खोलता है वो 2 साल में दुकान भी दे आता है, पैसा भी दे के, और बीवी की डांट खा के घर आ जाता है। इतना बड़ा जुल्म है कि मैं कहती हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दीन वालों को अल्लाह ने कल पूछना है कि तुमने लोगों को ये इश्यूज क्यों नहीं किया। और मैं कहती हूँ शुक्र है हम औरतें हैं। अगर हम, मैं सोचती हूँ कि अगर मर्दों के अंदर हमारा दायराकार होता तो मैं नमाज के साथ ये तरीके पहले पढ़ाती। जैसे औरतों को हम घरदारी की ज्यादा बातें करते हैं ना, बच्चों की तरबियत, अगर मेरा हाल है हमारे ऑडियंस मर्द होते तो पहले मैं उनको मनी मैटर सिखाना पसंद करती। जैसे तुमर के दौर में आपको था कि कोई बंदा कारोबार नहीं था शुरू कर सकता, कि भेजते उसको कहते जाओ ये किताबुल बियू, बियू कहते हैं तिजारत को, ये हदीसों में से ये पढ़ के आओ, सारी हदीसें पढ़वाते। जिस दिन वो, जिस तरह आप कह लीजिए कि एनओसी लेने के लिए आपको शर्त थी कि आपने हदीस में से तिजारी डिफरेंट हलाल हराम चीजें पढ़ ली, जब कोई ओके करता फिर उसको लाइसेंस मिलता। आज देखें हमारे क्या रोने हैं। सबसे बड़ा रोग हमारा आज जहालत है। हर तरफ आप देखेंगे बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कारोबार खराब है, कर्जों में डूबे पड़े हैं। हमारे मर्दों के जेरों पे खुशी क्यों नहीं है? भाई सब कुछ आपके पास है, परेशान हूं बेगम, कैसे खुश हूं, उसका देना, उसका लेना, कैसे होगा? 6 महीने छोड़ दीजिए, 6 साल का खाना हमारे बैंक में पैसों की जरूरत में पड़ा है, फिर भी गम यह कि अब क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, है कि नहीं? और जिसकी है ही टोटल रेड़ी की कीमत ही 500 रुपए है, वो तो रात को सुकून से सोता है, कहता है सारे बेच के आ गया हूं। समझ रहे ना? तो ये कर्ज की एक आदत है कि ये बंदे को दुखी कर देता है। यही चीजें ये लोग बता रहे हैं कि आप ले रहे हैं। अब आप देखिए, आज आपको ये बात, मेरा ख्याल है, रियलाइज हुई होगी कि किसी से आप कर्ज मांग रहे हैं, आपने अपनी किसी दोस्त से कहा कि मुझे कर्ज दे दो, आपकी पसली छोड़ दीजिए, आप पूरे भी बिक जाए तो वो कर्ज आप दे नहीं सकते, तो आपने अपनी दोस्त का माल बर्बाद कर दिया, जाया कर दिया। ठीक है, फिर कहते हैं कि वो कर्ज लेता है और इसके पास अदायगी के इम्कान तो मौजूद है। अब नोट कीजिए, जाहिर है कोई ऐसे तो नहीं उठा के दे देगा, कुछ चांसेस तो है ना, लेकिन इसका ख्याल अदम अदायगी का, यानी वो उसको है, यानी मिसाल है। देखिए अपने ऊपर लेके समझा सकती है ना, अल्लाह ना करे कभी ये जुबान इस बात पे बोले, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप मुझे $50,000 कर्ज दे दें तो मैं आपको वापस कर दूंगी, तो क्या आपका ब्रेन नहीं है? आपको मुझसे पूछना पड़ेगा ना, आप कहां से देंगी, कहें पूछेंगे ना मुझे, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि वो आपको पता है मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बस मेरा वो घर बिक जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगी। तो ये है इम्कान। इम्कान किसको कहते हैं इंग्लिश में? पॉसिबिलिटीज, चांसेस तो हैं, लेकिन इसका ख्याल अदम अदायगी का, यानी मैं क्या कहती हूँ, ले तो लो फिर देखेंगे, बाद में कह दूंगी बिका नहीं, बाद में, और चलो छोड़ो ना, तुम्हारा क्या है, मैं भी दूं। और अक्सर खानदानों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में ऐसे लेन देन होते हैं, बाद में दिल खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो देने का इरादा कोई नहीं है, चांसेस मौजूद है, या वो अपने भाई के माल की हिर्स करते हुए बिला जरूरत इससे कर्ज लेता है। ये भी बड़ी अहम बात है। आपका कोई रिश्तेदार है, बहुत आपके ख्याल में उसके पास बहुत कुछ है, अब आप कहते हैं कि जी देखो ना इनके पास इतना, जरा खींचते हैं इनसे हम भी, लाओ भी जरा दीजिए, जरा आप दीजिए, आप बाहर रहते हैं इतने साल से, आप कितना पैसे जरा दें, माल की हिर्स है। अच्छा ले लिया, जरूरत कोई नहीं, तो जरूरतें बड़ी बड़ी अपने कद से भी लंबी कर दी। मैं किसी की बात सुन रही थी, मुझे बड़ा मजा आया, कह रहे थे कि जब कोई कर्ज लेने आता है ना हमारे मुल्कों में तो बिल्ली चूहा बन जाता है, ऐसी मस्कीन शक्ल बनाता है कि लोग कहते हैं दे दो दे दो, तो जब आप 1 महीने बाद उसे कर्ज वापस जाए तो शेर बन जाता है कि आप डर के भाग जाते हैं कि इससे नहीं लेना। इट्स ट्रू। अब मेरा आपका यहाँ प्रैक्टिकल ऐसा कोई वास्ता नहीं, लेकिन आप जरा अपने किसी कारोबारी भाई, शौहर, बाप, किसी से भी पूछे, वो आपको 100 किस्से सुना देगा। आप घर किराए पे दें, आप किराया नहीं मांग सकते, आप उनको खाली नहीं करा सकते, वो कहते जब होगा मिलेगा दें, भी 4 साल से आपको मिला ही नहीं, नहीं कोई नहीं मिला दी जाए, अब आप कहते भाई कोई कानून, वो कहते छोड़े ये फलां बंदे हैं, इनके सामने हमने कहा करना, चुप चुप बैठे रहो। ये हालात हैं आपके, हमारे मुल्कों के, इधर तो पुलिस का डर ना हो तो हम यहां भी बहुत कुछ कर चुके होते अभी तक, राइट? तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके साथ क्या होगा कि वो अपने भाई का नुकसान जो है वो भाई के माल की हिरस करते हुए बिला जरूरत इससे कर्ज लेता है या मुराद इस तरह की दीगर सूरतें। मुराद वही बात, अब आपको बात समझ आ गई है।